पुरुष को परिपूर्ण रूप में देखा, परम पुरुष को किसको देखा, कृष्ण को देखा। कौन से कृष्ण को देखा? ब्रजेंद्रनंदन श्याम सुंदर को। उसी के अंदर में उन्होंने महासुरेश कृष्ण और बाकी को भी देखा। कृष्ण के साथ में देखा लक्ष्मी सहस्रमान कोटि कोटि लक्ष्मियां ये गोपियों के रूप में, और उनकी शक्ति राजकारी को देखा। उन्होंने शक्ति जीव शक्ति माया शक्ति को भी देखा। कृष्ण के लीला अवतार सदेकात्म अवतार आवेश अवतार जुगावतार मनवंतर अवतार समस्त अवतारों को भी उन्होंने देखा। और देख करके लीलाओं को देख करके और सब जस्यावरी पुण्य नारायण कृष्ण परम पुरुष से भक्ति भक्ति उन्होंने देखा। जो जी भगवान को भूल करके माया के चक्कर में घूम रहा है, अनंत काल तक भगवान को भूल करके इसी माया के चक्कर में घूम रहा है और आ रहा है। कभी देवता कभी गंधर्व, कभी दरिद्र कभी धनी, कभी अमीर कभी कुछ कभी कुत्ता कभी गधा, इसी प्रकार से संसार चक्र में भ्रमण कर रहा है। और जो लोग गुरु पदार्थ करके वैष्णव के संग में हरिभजन करते हुए साधन करते 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 आगे चल रहे हैं, वो धीरे धीरे माया से मुक्त होकर कृष्ण की तरफ ले जा रहे हैं और कृष्ण की लीला में प्रवेश होकर के एकदम आनंदमय हो रहे हैं, देख करके बड़े प्रसन्न हुए। और उसी को श्रीमद् भागवत के रूप में समाधि की भाषा समाधि भाषा के रूप में श्रीमद् भागवत संहिता का उन्होंने प्रकाश जगत उसमें उन्होंने कृष्ण के द्वादश अंगों के रूप में द्वादश स्कंद लिखे। कितने अध्याय? और
35
अध्याय और 18,000 श्लोक उनकी रचना की और बड़े सुंदर रूप में उनका प्रचार किया। इसमें पहले से लेकर के 9 अध्याय तक भक्तों का चरित्र, बड़े बड़े राजाओं का चरित्र, जिससे कि ऐसा वर्णन किया लोगों को संसार में विरक्ति हो जाए, बयान करो संसार नश्वर है, इसका कुछ भी मूल्य नहीं है। एक आदमी यदि स्वधर्म आचरण करते करते सारा जीवन भी बिता दिया तो भी उसे क्या लाभ है, और यदि भक्ति आचरण करता हुआ यदि बीच में मर भी गया, भक्ति यदि सिद्धि नहीं हुई तो हानि क्या हुई? कुछ भी हानि नहीं। यदि एक दिन भी भगवान की कथा उसके कान में पड़ गई या भगवान नाम मुख से निकल गया, भगवान की लीला कथा हमारी स्मृति में आ गई, एक दिन भी ठाकुर जी को प्रणाम कर लिया तो क्या होगा? यदि एक दिन भी यदि कर करके वो मर गया या पतित हो गया कुछ अपराध यदि नहीं हुआ तो फिर से उसका आरंभ होकर के फिर आगे बढ़ जाएगा, इसमें कहीं भी कोई हानि नहीं है। वो गीता में भी लिखा है यदि थोड़ा सा भी इसका भगवान नाम का भगवत भक्ति का आचरण कर लिया जाए या भागवत का एक श्लोक आधा श्लोक एक श्लोक के चार चरणों में से एक चरण अथवा उस श्लोकों में से कोई एक भी अक्षर भी यदि उसका उच्चारित ले जाए तभी उसका कल्याण हो जाएगा, जब उसके निकट नहीं आएगी एकदम गारंटी है। और नहीं संसार का समस्त धर्म भाई अच्छी तरह से पालन किया और भगवान का भजन नहीं किया तो जम पकड़ लेंगे चारों तरफ से, ये अर्थ रुपया पैसा स्वजन बंधु बांधव और धर्म की रक्षा नहीं कर सकेगा। अधिक से अधिक धर्म यदि करेगा भी तो स्वर्ग लोग ले जाए और फिर वहां से घुमाएगा उसी चक्कर में डाल देगा और भी समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवत संहिता को उन्होंने इस रूप में प्रकाशित किया, ये जब तक पृथ्वी रहेगी जब तक भक्त लोग रहेंगे तब तक श्रीमद् भागवत के सूर्य रहेंगे और जगत का कल्याण होता रहेगा। आज हम लोग श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद से हम लोग यहाँ से आरंभ कर और इसमें मैं तो वहां पर चलूंगा कुछ काम पर और धीरे धीरे ये सारा दिन जिसके लॉ नहीं टूटे में कीर्तन होगा, ठाकुर जी का ये भोगराग भी होगा सब कुछ और इसी प्रकार से ये भागवत चलता है चार बजे पांच बजे तक, पांच बजे के बाद में जैसे नियमित रूप में प्रवचन करता हूँ वो प्रवचन श्रीमद् भागवत का ही रूप में होगा। और इसके बाद में आरती होकर के और फिर थोड़ा सा कीर्तन होकर के अच्छे अच्छे भागवत के विद्वानों का यहाँ पर भाषण और प्रवचन इत्यादि होगा। और 12 बजे रात तक ये कीर्तन इत्यादि चलता रहेगा। फिर 12 बजे साढ़े 12 बजे कृष्ण का आविर्भाव हो जाने के बाद में साढ़े 12 बजे से 1 बजे तक अभिषेक इत्यादि कर सकते सब लोगों को चरणामृत और पंजरी इत्यादि लेकर के आज का उत्सव आज का समाप्त होगा। कोई खा लेना प्रसाद मत ले लेना, कल हम लोग पारण करने के बाद में तब हम फिर हम लोग ले। इस बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सारी रात भी जब करके हरिनाम करते हैं वो अपना कर सकेंगे। जो स्वस्थ हैं जो कर सकते हैं वो निर्जला उपवास भी कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं निर्जला वो जितना दूर तक हो सके 12 बजे तक हो जाए, शाम को हो जाए, रात तक हो जाए, जहां तक हो सके वहां तक निर्जला कर रहे हैं। और जो पूरा नहीं कर सकेंगे, जो पानी के बिना छटपट कर रहे हैं छटपट का देखभाल जरूरत नहीं, बालक वृद्धा नर नारी पुरुष सभी लोग उत्साह के साथ में जन्माष्टमी का पालन करें। और कल फिर नंदोत्सव होगा, नंद बाबा और यशोदा जी भंडार की कर रही है, उनका भंडार में आ रहा है और वो भंडार भी कर रही है और वो सभी कुछ तैयार हो रहा है। कल से दिन भंडारा वो लोग करेंगे, हम लोग भी उस भंडारे में शामिल होंगे। और भक्त लोग दही और हल्दी लाएंगे, दही और हल्दी और उसमें दूध मिला करके और नंद भगवान और वो सब लोगों के तिलक यहाँ लगा देंगे और कुछ नहीं, उछाला उछाली नहीं होगी। दही खींच के बदले वैचारी खींच न करके गलित सबके नंद बाबा का प्रसाद यशोदा जी का प्रसाद हम लोग ले लेंगे। और उसके बाद सुंदर से हम लोग का भगवान की बड़ी कृपा है, कल नगर संघ की संधि बड़े सुंदर निर्विघ्न रूप में हजार हजारों भक्तों के रूप में और बहुत सी कीर्तन मंडलियों के बीच में अपूर्व रूप से ही मथुरापुरी के जितने बड़े बड़े रईस लोग हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, धनी हैं, गरीब हैं, किंतु सज्जन हैं, भक्त हैं, क्यों नहीं भी है, सभी लोग अपने हृदय के आंतरिक रूप में सहयोग दे रहे हैं। ये कम सौभाग्य की बात नहीं है, ये सारी मथुरा को उमड़ पड़ती है हम लोगों के उत्सव में। और सब प्रकार से हम लोगों को कोई भी चिंता इत्यादि की जरूरत नहीं होती, सब लोग वही समाधान करते हैं। विशेष करके ये सब कोई नवदीप से आ गए हैं, कोई हरिद्वार से आ गए हैं, कोई वृंदावन से आए, कोई कहाँ से सब भक्त लोग आए हैं, आप लोग सब कमलापति ही कमला के पति उनके साथ भी है और सब लोग हैं, ये सब लोग मिलकर के देखे कि कमला का भंडार पूरा रहे, लक्ष्मी जी का भंडार पूरा रहे, सभी लोग देख सुन करके ऊपर उत्साह के साथ में इसमें लगे। पूर्ण भी नहीं यहाँ पर है, पूर्ण आनंद रहेगा, कोई भी चिंता की बात नहीं रही। यहाँ पर कृष्ण का प्रेम ही मिला रहता है, यहाँ पर सभी ऐसे ऐसे सब लोग सब समय मंगल ही मंगल है। इसलिए हम लोग का उत्सव खूब अच्छी तरह से संपन्न होगा। एक एक रूप में सब लगे हम इसके बाद में परमात्मा जी महाराज और सब हैं, शुभानंद ब्रह्मचारी जी हैं, यहाँ पर आरम्भ करेंगे और ये सब चौथा है, इसका कारण न सीखे दसम कथितो वंश विस्तारो भवतासो मधुचरो राजन च उभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम् महाराज जी नौ अध्याय तक श्रवण किया, नौ स्कंध का नौ स्कंध के अंत में सुखदेव गोस्वामी ने संक्षेप में विष्णु वंश का परिचय दिया, कृष्ण और बलराम के चरित्र सुनाए और वो मथुरापुरी में अवतीर्ण हुए, गोकुल में लीला किए, ऐसे सहज बहुत संक्षेप में सुख रूप में थोड़ा का वर्णन किया, तो सही अध्याय उन्होंने समाप्त किया। परीक्षित महाराज को बड़ा आनंद हुआ, उन्होंने सुना कि हमारे वंश में मथुरा में कृष्ण जी पैदा हुए, हमारे पूर्वज के रूप में है, हमसे संबंधित है, परीक्षित महाराज के पिता अभिमन्यु, अभिमन्यु के पिता अर्जुन, और अर्जुन के भाई है मोटेरे कृष्णचंद्र जी, और सुभद्रा के भी भाई है कृष्ण, और सुभद्रा से अभिमन्यु, और अभिमन्यु से ये परीक्षित महाराज, इसलिए परीक्षित महाराज का है आज हमारे पूर्वज जो कृष्ण है, आज उनकी कथा सुनने का अवकाश मिला, प्रभु हमारा मन भरा नहीं, इसलिए आप कृष्ण की बलदेव की लीला चरित्रों को विस्तारित रूप में और अपूर्ण भर भाव से आप वर्णन कीजिए, इसलिए वो कह रहे हैं कथितो वंश विस्तारो भवतासो सूर्य, तो माने चंद्र वंश का और सूर्य वंश के बड़े बड़े राजाओं का, भक्तों का, महर्षियों का चरित्र आपने वर्णन किए हैं, राज्यां उभय बंधाना जिसमें इक्ष्वाकु अज महाराज दशरथ रामचंद्र और लवकुश इत्यादि का आपने वर्णन किया और राम का अपूर्व जट वर्णन किया, इसके बाद चंद्रवंश में भी आपने प्रारंभ से ही ध्रुव के पिता उत्तान दास और प्रियव्रत इसको बात दे ध्रुव जी, उसके बाद में बड़े बड़े ऋषि दक्ष प्रजापति शंकर जी का चरित्र और सब आपने कपिल देव ऋषि का संवाद भी आपने सुनाया, आपने पिताश्री का उपाख्यान भी श्रवण कराया, इस तरह से आपने सब वर्णन किया, वर्णन करने के बाद भी अद्भुत चरित्र वर्णन किया, जब प्रधानमंत्री लक्ष्य और चंद्रवंश ने जदु नाम के एक परम धर्मात्मा राजा हो गए, यहाँ पर परम धर्मात्मा का भी क्या तात्पर्य, जो सत्यवादी होता है वो धर्मी है, जो लोग दूसरों के लिए अपने शिव को भी दे देते हैं वो लोग धर्मी है, दूसरों का उपकार करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, बेईमानी नहीं करते हैं, परिस्थितियों को माता और पुत्र के समान ज्ञान करते हैं, पास अजुआ इत्यादि नहीं खेलते, इनसे दूर रहते हैं, अहिंसा इत्यादि का प्रतिष्ठान करते हैं, ये लोग किंतु ये परमाद्भुत जो इनका चरित्र है, ये कौन जदु महाराज का, ये केवल धार्मिक ही नहीं है, ये तो ऐसे महापुरुष हैं जो भगवत भजन करने के लिए, भगवान की सेवा के लिए अपने पिता इत्यादि को भी त्याग कर दिया, उनका आदेश नहीं पालन किया, पुत्र का कर्तव्य है कि पिता का वो आदेश माने, माता जी का आदेश माने, किंतु वह पुत्र सबसे श्रेष्ठ है जो भगवान के लिए भी माता पिता गुरु भाई तथा बंधु स्त्री सबको प्रत्याग कर सकता है, गुरु न सत्या बदनों न सत्या पिता न सत्या जन्म न सत्या अपने गुरु को, जिन गुरु ने बलि महाराज जी ने अपने गुरु को प्रत्याग कर दिया, गुरु का प्रत्याग कभी भी नहीं विहित है, गुरु को अपना भगवान का स्वरूप जानो, किंतु ऐसे गुरु को भी बलि महाराज ने प्रत्याग कर दिया कि इसलिए कि भगवान को या समस्त राज्य अवपत्ति देने के लिए मना किया था। भरत जी ने अपनी मैया को त्याग कर दिया क्योंकि रामचंद्र जी के सेवा में बाधा दी थी और विभीषण अपने भाई को भी छोड़ दिया भगवान का भजन करने के लिए, रावण ने बाधा दी थी, पिता का हरण कर लिया था। उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज ने अपने पिताजी को छोड़ दिया और गोपियों ने अपने अपने पति को छोड़ दिया। भगवान का भजन करने वाले ही सर्वश्रेष्ठ परम धार्मिक है और वही भक्ति लोग भगवान के हित की भक्ति करने वाले होते हैं। इसलिए जब जी ने इसका इतिहास है वो पीछे सब देखेंगे पाएंगे। उन्होंने अपने पिताजी का वचन नहीं माना, उन्होंने पिताजी ने कहा था युवावस्था हमको दे दो, हमारी वृद्धावस्था ले लो। उन्होंने कहा युवावस्था हम नहीं देंगे, ये युवावस्था भगवान का भजन और भगवान की सेवा करने के लिए है, भोगों को भोगने के लिए नहीं है। आप भगवान का भजन कीजिए, मैं अपना युवावस्था को दे दू, किंतु आप भोग विलास करेंगे, राजधन का भोग करेंगे, इसके लिए मैं नहीं हुआ। उसके पिताजी असंतुष्ट हुए, नाराज हो गए। फिर उनके पुत्र जी ने कहा अच्छा बात है, मैं आपको देता हूँ। उन्होंने अपना युवावस्था ले लिया और उसके बदले में वृद्धावस्था ले ली। उन्होंने कहा कि तुम ही हमारा यथार्थ पुत्र है, जाओ तुम्हारे वंश के लोग, तुम हमारे वंश का उत्तराधिकारी होगा और तुम्हारे वंश के जो जन्म लेने वाले होंगे उस वंश में राजा होते जाएंगे। जदु का कोई नहीं, जदु न तो खुद राजा होगा और न सम्राट होगा, न उसके पुत्र और वंश परंपरा के कोई राजा होंगे। सुनकर कहा ये मत तू ऐसा ही हो, मैं राजा नहीं चाहता, मैं भगवान का भजन करना चाहता हूँ। इसीलिए भगवान उनको प्रसन्न होगा कि उसी कुल में कृष्ण के रूप में बलदेव के रूप में ये पधारे। उसी वंश में चंद्र वंश में ही हमारे पांडव लोग इत्यादि भी जितने भक्त लोग थे इसी पंथ में दो पत्नियां थी, एक क्षत्रियानी और एक थी गोपी। गोपी से परजन्य और परजन्य से नंद महाराज और नंद महाराज से कृष्ण हुए और इन्हें अजामिल से हुए सुरसेन से हुए वसुदेव महाराज और वसुदेव महाराज से कृष्ण हुए। इस तरह से दोनों परंपराएं एक से निकल करके और फिर ऐसे होती थी, दोनों एक नहीं मिल गई। एक में हुए कृष्ण ऐश्वर्य रूप में आए समस्त ऐश्वर्य इत्यादि के साथ में और एक में समस्त आधुर्य इत्यादि लेते हैं माधुर्य के द्वारा प्रबंधित होकर के माधुर्य लेकर के दोनों ने मिलकर के मिलाए थी। इसमें कृष्णचंद्र जो द्वारका भीष्म हुए थे मथुरा द्वारका में ऐश्वर्य में ली जाएगी थी, उसमें भी माधुर्य है किंतु ऐश्वर्य के द्वारा माधुर्य गुप्त पूछता है और ब्रज में माधुर्य प्रकटित है और ऐश्वर्य गुप्त छिपा हुआ है। ऐसे सब लीलाएं थी। उन्होंने कहा जब का अंतिम अवतीर्ण कृष्ण विष्णु विज्ञान संतना, यहाँ पर कि अंत के साथ कृष्ण जी स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर वहां पर प्रकटित हुए। अंत के साथ में मैंने क्या बलदेव ने कहा, बलदेव उनके अंत है उनके साथ में और अंत कौन है और सब अवतार है द्वारका में बलदेव वासुदेव ऐसे विष्णु का संपूर्ण जग को वर्णन नहीं किया जा सकता है, अंत में कुछ वर्णन कीजिए। इसके बाद में अवतीर्ण जन्मो जदोर वंशे भगवान भूत भावन कितवान ज्ञान विश्वात्मा तानि नो पद विस्तरा निरस्त कलशै रूपदीयमान
यहाँ पर भूतभाव भूतों को पालन पोषण करने वाले संपूर्ण
पूर्ण भगवान जब वंश में अवतीर्ण हुए वहां पर विश्व के कल्याण के लिए क्या क्या लीलाएं की वो मथुरा में प्रकटित होकर के गोकुल में क्यों चले गए। गोकुल में कुछ दिनों तक लीला करने के बाद फिर मथुरा में क्यों चले आए और मथुरा में कुछ दिन रहने के बाद में द्वारका क्यों चले गए, इसका कारण हमें बतलाइए। मथुरा में कौन कौन सी लीलाएं की, इसके पश्चात में गोकुली चार में कौन सी लीलाएं की, ब्रजमंडल में कौन कौन सी लीलाएं की, उसके बाद में फिर मथुरा में आकर के क्या क्या किया, गुरुगृह में कैसे पढ़े लिखे, तत्पश्चात फिर चले गए द्वारका में गए क्यों और वहां पर कितनी स्त्रियों के साथ उनकी शादियां हुई, कैसी कैसी शादियां हुई, कौन कौन सी लीलाएं की, इस सब का वर्णन आप विस्तार पूर्वक कीजिए। जो लोग भावों की औषधि क्या है, एकमात्र हरि कथा, वो हरि कथा सब हरि कथा ही भावों की व्याधि है, औषधि है। हाँ है तो किंतु अवैष्णव मुखो स्वर्णम पूतम हरि कथा अमृतम भगवान की लीला कथाएं सभी भावों के लिए अवसर है, किंतु अवैष्णव यदि व्यक्ति हो और उससे निकली हुई हरि कथा हो तो सांस के निकले हुए बीज के समान वो कार्य करता है, उस कथा को नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो भागवत की कथा कहने लगेगा कोई व्यक्ति और उसमें सत्यनारायण की कथा भी डाल देगा, कहे वही कृष्ण सत्यनारायण है और भागवत का कथा कहने से पुत्र लक्ष्मी इत्यादि सभी इसी की प्राप्ति हो, वही सत्यनारायण का वाचन हो जाएगा, धर्म अर्थ काम को किसने लगा देगा और इसका पाठ करने से लड़का पैदा हो जाएगा, इसका पाठ करने से रोग दूर हो जाएगा, इसका पाठ करने से स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसा समझा देगा भागवत कार्य पाठ का ये नहीं। इसलिए वैष्णव को मुख्य भगवान की कथा सुनिए और विशेष करके निवृत्त पर कई उपति जमाना जिनकी समस्त तृष्णाएं निवृत्त हो चुकी है, कोई भी कामना नहीं है, जिसको अर्थ धर्म काम मुक्त, यहाँ तक की नारायण की भक्ति, यहाँ तक की राम और द्वारकाधीश इत्यादि के प्रति भी शुद्ध निर्मल अनुराग नहीं, कृष्ण के चरणों में राधा जी के चरणों में अनुराग है, ऐसे परम संत जो सुखदेव गोस्वामी है परम निवृत्त है, ऐसे लोगों के मुख से जो हरि कथा निकलती है वो भवों के लिए औषधि है और भक्तों के लिए कहता है रसमयी है और ब्रजलोक में पहुंचा देने वाली कथा है। इसको विषयी त्यागी मुमुक्षु योगी भक्त एकांतिक भक्त अरसिक भक्त सभी लोगों के लिए परम आदर, कौन ऐसा मूर्ख आदमी है, आत्मघाती मनुष्य है जो कि भगवान की कथा ऐसे महापुरुष के मुख से निवृत्त कथा कई मुख से न सुने जो भव रोग का औषधि और ब्रजरस को देने वाली ये कथा है, ऐसी कथाओं के प्रति ऐसा कौन सा मूर्ख व्यक्ति आत्मघाती है जो उनकी नहीं होती है। इसलिए सब लोगों को भागवत की कथा सुननी चाहिए, किसी पर उनके जन्म इत्यादि तिथियों के अवसर पर ये तो जरूर सुनना चाहिए। आज ही तक करके मैं अपना भी वक्तव्य समाप्त करता हूँ, इसके बाद में धीरे धीरे